नमो भगवते वासुदेवाय। छठा स्कंद, पहला अध्याय, अजामिल के जीवन का इतिहास। श्लोक क्रमांक 63। तत् निमित्त स्मर व्याज ग्रह ग्रस्तः विचेतनः ताम एव मनसा ध्यायन् स्वधर्मात् विररामः। तन्निमित्तस्मरव्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद् विररामः। तन्निमित्तं स्मरव्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद्विररामः। तन्निमित्तस्मरव्याज। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र राहु और केतु जैसे अधम ग्रहों से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार उस ब्राह्मण अजामिल ने भी अपना सभी सद्ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वह बराबर उस वेश्या के ध्यान में मग्न रहने लगा और थोड़े ही दिनों में उसने उसे अपने घर में दासी के समान रख लिया और सभी ब्राह्मणोचित नियामक सिद्धांतों का परित्याग कर दिया। तात्पर्य। इस श्लोक के कहने से सुखदेव गोस्वामी पाठक के मन पर यह प्रभाव डालना चाहते हैं कि उस वेश्या के संसर्ग के कारण अजामिल की ब्राह्मण रूप में वह उच्च स्थिति इतनी पराभूत हो गई कि वह ब्राह्मणोचित अपने सभी क्रियाकलापों को भूल गया। फिर भी अपने जीवन के अंत में नारायण शब्द के चार वर्णों नारायण का उच्चारण करने के कारण वह नरक में अधःपतित होने के घोर भय से बच गया। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान की अल्प मात्रा ने भी में भी भक्ति प्राणी को बड़े से बड़े खतरे से बचा सकती है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाले भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि संभोग सुखों में अत्यधिक लीन होने के कारण भी यदि कोई ब्राह्मण के उच्च पद से च्युत हो जाता है तो भी वह सभी विपत्तियों से बचाया जा सकता है। यदि वह किसी भी प्रकार श्री भगवान का पवित्र नाम ले ले, यह भगवान के पवित्र नाम को असामान्य शक्तिमत्ता है। इसीलिए भगवद गीता में यह सम्मति दी गई है कि प्राणी को एक क्षण के लिए भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से न चूकना चाहिए। सततम् कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। इस भक्ति योग इस भौतिक जगत में इतने अधिक खतरे हैं कि कोई भी प्राणी किसी समय उच्च पद से अधःपतित हो सकता है। फिर भी यदि कोई अपने को सदा पवित्र एवं हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में दृढ़ बनाए रखे तो निस्संदेह सदा सुरक्षित रहेगा। अनुवाद दोहराइए। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र राहु और केतु जैसे
राहु और केतु जैसे
अधम ग्रहों से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार उस ब्राह्मण अजामिल ने भी अपना सभी सद्ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वह बराबर उस वेश्या के ध्यान में मग्न रहने लगा और थोड़े ही दिनों में उसने उसे अपने घर में दासी के समान रख लिया और सभी ब्राह्मणोचित नियामक सिद्धांतों का परित्याग कर लिया। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीकृष्णं। तो यहाँ पे एक परिपूर्ण उदाहरण है, हम देख रहे हैं कि कैसे किस व्यक्ति का सद्मार्ग से पतन हो जाता है। सब कुछ चिंतन के ऊपर आधारित है। हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें संसार के कई दृश्य, कई ध्वनियां इत्यादि हमारी चेतना में स्वीकार करते हैं और इनके ऊपर, इंद्रियों के विषयों के ऊपर फिर हम चिंतन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते रहते हैं, उनके प्रति लगाव हो जाता है, ये स्वाभाविक है। और फिर काम उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस पतन प्रणाली का वर्णन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति तो पतन, अंत में पतन है। शुरुआत में क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः मतलब मनुष्य, ध्यायतो मतलब ध्यान करना, किसके ऊपर? विषयान, इंद्रियों के विषय, चाहे भौतिक रूप हो, भौतिक ध्वनि हो, भौतिक स्वाद हो इत्यादि। तो इन विषयों के ऊपर जब कोई व्यक्ति ध्यान करने लगता है, ज्यादा सोचता है, चिंतन मनन करता है इसके ऊपर, तो फिर क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, उसके प्रति, उन विषयों के प्रति उसके मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामः, जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस विषय को भोगने की इच्छा हो जाती है। जैसे सोच लीजिए, व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, एक भक्त है, उसने कोई होटल में कोई अच्छी चीज देखी जो बाहर लिखा हुआ है, प्रसाद नहीं है वो, खाने वाली चीज नहीं है, हमारे नियमों के विरुद्ध है, लेकिन उसको देखता है, चिंतन करता है, पुरानी आदतों की वजह से शायद उसके मन में उस वस्तु को भोगने की इच्छा हो जाती है, खाने की इच्छा हो जाती है। तो इसलिए संगात संजायते कामः, उसको भोगने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है मन में। कामात क्रोधो भी जायते, तो जब काम जो है वो पूर्ण नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, तो व्यक्ति को क्रोध आता है। आजकल लोग ज्यादा क्रोधी स्वभाव के क्यों हैं? सब असंतुष्ट हैं, अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, असंख्य भोग की इच्छाएं उनके मन में हैं, परंतु भोग के साधन उतने नहीं हैं, भोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सदैव क्रोधित रहते हैं। कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः। फिर क्रोध से आदमी सम्मोहित हो जाता है, बहुत कुछ गलत चीजें सोचने लगता है अपने आप के बारे में, दुनिया के बारे में, दूसरों के बारे में। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, फिर इसकी स्मृति नष्ट हो जाती है ऐसे मोह में आके। और जब स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, फिर उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। व्यक्ति की स्मृति जब तक रहती है उसकी बुद्धि भी ठीक रहती है, जब स्मृति नष्ट हो जाती है बुद्धि नष्ट हो जाता है। इसके लिए एक उदाहरण, अगर आदमी भूल जाता है किसी काम की वजह से, किसी भी एक भोग इच्छा की वजह से, कि इसका क्या परिणाम हो जाता है, पिछली बार मैंने ये एक वर्जित वस्तु खाया था, किस तरह से मेरा पेट खराब हो गया था, कैसे मुझे तड़पना पड़ा, डॉक्टर के पास जाके इतनी दवाइयां लेनी पड़ी, इंजेक्शन लेने पड़े। लेकिन जब उस व्यक्ति उस वस्तु को देखता है, वो खाने की इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है इसके अंदर कि सब भूल जाता है कि मैं कितना दुखी था इस चीज को करने से पिछली बार, और फिर उसी चीज को करने का इच्छुक हो जाता है, और वो इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि उसकी बुद्धि नाश हो जाता है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो भूल जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, सोचता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। पिछली बार भी इसका परिणाम वो भुगत चुका है, भूल जाता है, स्मृति नष्ट हो गई, और इसकी वजह से उसकी बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करती कि देखो अभी मैंने इस चीज का भोग कर लिया, फिर से मेरा पेट खराब हो जाएगा, फिर से गड़बड़ हो जाएगा, फिर से बहुत दुखी हो जाऊंगा, पीड़ित अवस्था में रह जाऊंगा, सोचता नहीं है। स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो आदमी का पतन हो जाता है। तो अजामिल का जो उदाहरण है, एक आदर्श परिपूर्ण उदाहरण है पतन का, कि कैसे व्यक्ति का चिंतन करके, विषयों का चिंतन करके, उसके ऊपर ध्यान करके कैसे धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। जिस तरह से ये, जैसे यहां उदाहरण दिया हुआ है, ग्रह ग्रस्तो विचेतनः, जब ग्रहण हो जाता है चंद्र का या सूर्य का, तो कौन से ग्रह ग्रहण करते हैं, राहु और केतु, जो कि निम्न श्रेणी के हैं। सूर्य और चंद्र उच्च कोटि के ग्रह माने जाते हैं। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वति समाह, तो पुण्य करने वाले लोग ही ऐसे उच्च कोटि के ग्रहों को प्राप्त कर सकते हैं मृत्यु के बाद। पुण्यवान पुण्यात्मा ही जा सकते हैं सूर्य और चंद्र में। जैसे आधुनिक वैज्ञानिक सोचते हैं कि सूर्य और चंद्र में कोई प्राणी नहीं है, ये गलत बात है। वास्तव में वहां तो केवल पुण्यवान लोग रहते हैं, लेकिन वहां के शरीर उस वातावरण के लिए उपयुक्त हैं। जैसे सूर्य में अगर रहना हो तो हमें अग्नि का शरीर चाहिए। हम इस पृथ्वी और जल के बने हुए शरीर से सूर्य लोक में नहीं जा सकते। उसी प्रकार से चंद्र लोक में रहने के लिए भी कोई उपयुक्त शरीर चाहिए। तो ये तो उच्च कोटि के ग्रह हैं, लेकिन इनका ग्रहण किससे हो जाता है, जो नीचे निम्न श्रेणी के जो ग्रह हैं राहु और केतु, उनसे। ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति की अच्छी चेतना, शुद्ध चेतना, पवित्र हृदय, उसके अच्छे विचार, उसकी सद्बुद्धि, सब ढके जा सकती है किससे, बुरे संग से। और फिर विचेतना, उसकी चेतना जो है दूषित हो सकती है। अच्छे गुणों से, सद्विचार से, सद्बुद्धि से व्यक्ति एक उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। एक ऊंचे स्तर का, ऊंचे स्थान का लक्षण है उसके अच्छे विचार और उसके अच्छे कार्य। अगर व्यक्ति अपने अच्छे विचार और अच्छे कार्य को त्यागता है, तो फिर वो अपने ऊंचे पद को भी बनाए नहीं रख पाएगा, उसका पतन हो जाएगा उस ऊंचे पद से। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो बहुत ध्यान से अपने बनाए हुए ऊंचे पद को अच्छी तरह से सही सलामत रखे। पुरानी आदतें जो हैं उनसे हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। पुरानी आदतों से हमारा स्वभाव बनता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि जैसे एक कुत्ते को अगर आपने राज सिंहासन पर बिठा दिया और उसके सर के ऊपर सोने का मुकुट रख दिया और कोई सामने से आदमी आके उसको हड्डी दिखाए कोई, तो तुरंत वो अपनी नए पद को छोड़कर अपने पूरे पुराने जो आदत है उसका शिकार हो जाएगा, उस राज सिंहासन पर से कूद जाएगा, सिंहासन एक तरफ रह जाएगा, उसका मुकुट दूसरी तरफ रह जाएगा, सीधे हड्डी के पीछे चले जाएगा। उसका पुराना स्वभाव बाहर आता है, प्रकट होता है, क्योंकि आखिर पशु तो पशु है, अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। परंतु इंसान और पशु में अंतर यह है कि इंसान अपने तीन गुणों से, इस भौतिक शरीर से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को बदल सकता है। यही तो भक्ति है, भक्ति का काम ही यही है। कर्म और स्वभाव दोनों एक है। हमारे पुराने कर्मों से हमारा जो है वर्तमान काल का स्वभाव तैयार होता है। आप सब जानते हैं कि भगवद गीता में 5 विषयों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण चर्चा करते हैं, ईश्वर यानी भगवान, जीव यानी आत्मा, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 वस्तुओं में से केवल कर्म जो है वो सनातन या शाश्वत नहीं है, अन्य चारों चीजें शाश्वत हैं। तो कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि जब कर्म का फल हम भुगत लेते हैं तो वो कर्म नष्ट हो जाता है, और उस कर्म से जो प्रारब्ध या जो स्वभाव प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसको भी बदला जा सकता है। कैसे? किसी ऊंचे उच्च कोटि के कार्य से, और वो है भक्ति। तो जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके पुराने स्वभाव को या उसके वर्तमान काल के स्वभाव को वो बदल सकता है। जैसे अनुभव है, कई लोग आते हैं मंदिर में, वो कहते हैं पहले मेरा स्वभाव इतना क्रोधी था, लेकिन भक्ति में आने के बाद मैं कितना सुधर गया। एक भक्त उदाहरण दे रहे थे कि पहले मैं छोटी छोटी बात से लोगों से झगड़ता था। जब मैं रेलगाड़ी में जाता था घर से काम, मेरे दफ्तर में, दफ्तर से वापस आते टाइम रेलगाड़ी में सभी लोग झगड़ते हैं, बंबई की बात है। तो एक बार ऐसे हो कि रात को देर से आ रहा था और मैंने मेरे पैर जो है दूसरी सीट, सामने वाले सीट पर रखे थे, कोई आदमी आया, उसने कहा पैर हटाओ। तो मैंने तुरंत पैर हटा लिया, कहा बैठे बैठे ना बैठे, और मैंने सीट साफ करके रख दिया। उसने कहा कि ये ऐसे मैंने किया क्योंकि मैं अब जप करने शुरू कर दिया, अगर मेरा पुराना स्वभाव रहता तो मैं कुछ उल्टी बातें उसको कह देता, झगड़ा कर देता, लेकिन अब मेरा स्वभाव बदल गया है, अब मैं झगड़ा नहीं करता, अब मैंने अच्छे आराम से नम्रता से उसको बुलाया। तो कहने का मतलब है कि भक्ति से अपना स्वभाव बदल सकता है। जब स्वभाव बदलता है तो फिर धीरे धीरे से व्यक्ति के कार्य भी बदलने लगते हैं। तो जब व्यक्ति वैष्णव बन जाता है तो इसका मतलब है कि उसने एक ऊंचा पद प्राप्त कर लिया है। वर्णाश्रम धर्म में सबसे ऊंचा पद ब्राह्मण का माना जाता है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। लेकिन वैष्णव का पद जो है वो ब्राह्मण से भी ऊंचा है। तो इतने ऊंचे पद को प्राप्त करने की योग्यता क्या है? उसके विचार और उसके कार्य। क्योंकि उसने दुष्ट बुद्धि को त्याग दिया है और उसने पाप कर्म को त्याग दिए हैं, और इन निम्न श्रेणी के कार्यों को त्याग कर उच्च श्रेणी के, उच्च कोटि के कार्यों को, विचारधारा को उसने स्वीकार किए हैं, जैसे कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, रोज मंदिर में आना, सत्संग करना, भगवान का दर्शन करना इत्यादि। तो इन कार्यों को स्वीकार करने से, इन विचारों को स्वीकार करने से आदमी अपने पद को बदल देता है। पद कैसे प्राप्त होता है? अपने विचारों और कार्यों से। ऊंचे कोटि के विचार और कार्य किए, हमारा पद ऊंचा। निम्न श्रेणी के कार्य और विचार हमने स्वीकार किए तो हमारा पद नीचा, निम्न श्रेणी का। तो जब वैष्णव का पद हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें चाहिए कि इस पद को बनाए रखना है, और बनाए रखने के लिए इस पद के लिए जो उचित कार्य हैं उनको करना है, और जो अनुचित कार्य हैं उनको त्यागना ही है। अगर हम इन दो चीजों के बारे में सावधान नहीं रहेंगे तो हम इस वैष्णव के ऊंचे पद को बनाए नहीं रख पाएंगे, इससे हमारा पतन निश्चित होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसः। ध्यायतो मतलब ध्यान करना। ध्यान किससे होता है? जब हम किसी वस्तु को पहले इंद्रियों के माध्यम से हमारे चेतना में प्रविष्ट करते हैं, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को सुनते हैं, चखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर संसार में हम अपने आंखों को बंद करके नहीं जा सकते रास्ते के ऊपर, कानों को बंद करके नहीं जा सकते, जिह्वा को हम होठों के ऊपर ताला मार के नहीं जा सकते, तो हमको इंद्रियों के विषय जो है उनका प्रभाव तो इंद्रियों पर पड़ेगा। परंतु महत्वपूर्ण बात क्या है? ध्यान। उन चीजों के ऊपर, विषय के ऊपर हमको ध्यान नहीं करना चाहिए। अगर हम ध्यान करते रहे तो फिर उस ध्यान से हमारा पतन होगा। फिर ये पतन का जो सूत्र है, पतन का फॉर्मूला है, जो भगवद गीता में बताया गया, जिसका वर्णन हम कर चुके अभी अभी, तो फिर वो काम करना शुरू करेगा। तो व्यक्ति को चाहिए, खास करके वैष्णव को चाहिए, कि वो अपने मन को बड़े सावधानी से देखे, उसकी परीक्षा करे, कि जैसे ही मन में बुरे विचार आते हैं उन विचारों को वहीं पर रोक देना चाहिए। बुरे विचार क्यों आते हैं? हमारे अनुभव के आधार पर। अनुभव कैसा? हमारी इंद्रियों के जो इंद्रियों के विषयों का स्पर्श हुआ है उसका अनुभव। हमने शायद कोई ऐसी चीज देखी होगी जिसका चिंतन करने से हम उत्तेजित हो जाते हैं, इंद्र तृप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। तो यह है अनुभव, और ये सारे अनुभव हमारे मन में रखे हुए हैं। हमारा मन हमारे सारे अनुभवों का भंडार है। तो इस अनुभव के बारे में जब हम चिंतन करने लगते हैं तो वही चिंतन हमारे पतन की शुरुआत है, इसलिए उसी समय उसको रोकना चाहिए। जैसे कि आग को रोकना है तो कब रोकना चाहिए? शुरुआत में ही, जब चिंगारी की अवस्था में, उसी समय उसको दबाना चाहिए। बीमारी को कब दबाना चाहिए? शुरुआती की अवस्था में, जब हमें पहचान पता लगता है कि बीमारी शुरू हो रही है, ठीक उसी समय उसको दबाना चाहिए। उसी तरह से ऋण को कब चुकाना चाहिए? शुरू में ही, जैसे जल्दी से जल्द रखना नहीं चाहिए इसको। चाणक्य पंडित कहते हैं कि इन तीन चीजों को जल्दी से जल्दी हमको दबाना चाहिए, आग और क्या, ऋण और बीमारी। तो उसी प्रकार से बुरे विचारों का भी दमन वैसे ही करना चाहिए। जैसे मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं वैसे उनका दमन कर देना चाहिए। बुरे विचार जब मन में आते हैं तो भौतिक आदतों से जो एक मजबूर मन जो है वो उन बुरे विचारों को के ऊपर आराम करने की इच्छा रखता है, क्योंकि इसको बहुत अच्छा लगता है बुरे विचारों के ऊपर आराम करने से, और फिर धीरे धीरे उन चीजों के बारे में चिंतन करता है। जैसे चिंतन करता है फिर बात आगे बढ़ती है। इसलिए यहां पे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ताम एव मनसा ध्यायन स्वधर्म विररामः। तो उन उस विषय के ऊपर एव निश्चय ही, जब उसने ध्यान किया अजामिल ने अपने मन के ऊपर, केवल ध्यान नहीं, मनसा ध्यायन, बार बार स्मरण किया, चिंतन मनन करते गया अजामिल, तो फिर क्या हुआ? स्वधर्म विररामः, अपने स्वधर्म को उसने त्याग दिया। उसी प्रकार से अगर वैष्णव अपने पुराने अनुभव या देखे हुए दृश्यों के ऊपर ज्यादा चिंतन करेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे से वो जप छोड़ देगा, फिर चार नियमों का पालन छोड़ देगा, ऐसे करके धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है। तो ये सब शुरुआत होती है बुरे संग से। बुरे संग से वैष्णव को बहुत बच के रहना चाहिए। अगर हम अच्छे संग में भी हों लेकिन अच्छे संग करते करते भी अगर हम बुरा संग भी कर रहे हैं तो वो भी हमारे पतन का कारण हो सकता है। भक्तों के संग की बात तो दूर है, अगर हमने स्वयं भगवान का संग किया हो, उनके सानिध्य में हम हैं, फिर भी अगर हम साथ साथ बुरा संग कर रहे हैं फिर भी हमारा पतन हो सकता है। इसके लिए कोई उदाहरण, काल कृष्णदास, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, दक्षिण भारत की यात्रा में गए वो तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने के लिए, तो भक्तों ने उनके साथ एक सेवक भेजा जिनका नाम था काल कृष्णदास। उनकी सेवा करते करते काफी समय बीत गया, लेकिन दक्षिण भारत में एक जगह वो आए जहाँ भट्टथारी नाम के जाति के लोग थे, समाज के, जो जिप्सी थे। जिप्सी मतलब वो एक स्थान में रहते नहीं है, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, घूमते भी रहते हैं। और उनके बीच में उनकी पद्धति ये थी कि उनके स्त्रियों के माध्यम से वो किसी ऐसे एक मासूम पुरुष को आकर्षित करके उसको वश में कर लेते थे और उनके समाज में उसको शामिल कर देते थे, ऐसे उनकी संख्या भी बढ़ती थी। तो जब चैतन्य महाप्रभु काल कृष्णदास को लेकर गए और ये भट्टथारी लोग पास में आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये थोड़ा बहुत काल कृष्णदास इन भट्टथारी स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो गए हैं, तो उनको चेतावनी दी, परंतु फिर भी भट्टथारी स्त्रियों ने काल कृष्णदास को वहां से वो ले गए और काल कृष्णदास चले भी गए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे वो, उनके निजी संघ में थे, चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर वो उन भट्टथारियों के साथ चले गए। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, उनको बहुत गुस्सा आया, सीधे उन भट्टथारियों के समाज में गए, काल कृष्णदास का हाथ पकड़ा, उसको खींच के ले गए उन स्त्रियों के बीच में से। और फिर ये जो भट्टथारी लोग हैं बड़े क्रोधित हो गए और अस्त्र शस्त्र धारण किए वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए, लेकिन महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनसे उनका कौन कुछ बिगाड़ सकता है, और वही अस्त्र जो है उन्हीं के ऊपर लगने लगे जो आक्रमण करने वाले थे भट्टथारी लोग महाप्रभु के ऊपर। जिन शस्त्रों से वो आक्रमण कर रहे थे वही शस्त्र उल्टे उनके ही ऊपर आने लगे, और इस प्रकार से काल कृष्णदास को चैतन्य महाप्रभु ने उनके संग से बचाया। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा काल कृष्णदास से। सारी यात्रा जब समाप्त हो गई, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी फिर से पहुंच गए, तब उन्होंने अन्य भक्तों से कहा कि मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूं, इसको ले जाओ यहां से। फिर जो है सारे भक्तों ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ, तब चैतन्य महाप्रभु ने समझाया। काल कृष्णदास को बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत बुरा लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन महाप्रभु ने क्षमा नहीं की उसको। और बाद में वैष्णव थोड़े कृपालु हुए, वैष्णव ने उसको कोई ना कोई छोटी छोटी सेवा में लगाया, जैसे बंगाल में जाकर कुछ संदेश दे दो बंगाल के वैष्णवों को। तो एक बार नित्यानंद प्रभु वगैरह ने काल कृष्णदास को सेवा में लगा दिया। ठीक है, महाप्रभु का दर्शन तो नहीं कर सकता है, लेकिन चलो सेवा में तो रखे उसको थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से बुरा संग का प्रभाव क्या है, इस छोटी सी कहानी से हम जान सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कई बार इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर उपदेश दिए। तो चैतन्य चरितामृत से हम ये थोड़ी घटनाओं के बारे में सुनेंगे। पहली बात तो विशेष करके उनकी जो उनके उपदेश है सनातन गोस्वामी को दिए हुए, ये महत्वपूर्ण है। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय में पाए जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इसके पहले बताया हुआ है कि वैष्णव की महानता क्या है, वैष्णव कौन है, जिसके बारे में हम रविवार को चर्चा कर चुके हैं, और वैष्णव कितने महान होते हैं, वैष्णव का संग प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण होता है, और वैष्णव के संग में आके जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो वास्तव में कृष्ण प्रेम मिल जाता है। और इसके बाद अब सनातन गोस्वामी को वो चेतावनी दे रहे हैं कि देखो, जितना ही महत्वपूर्ण भक्तों का संग करना है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अभक्तों का संग त्याग करें। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं आइए सुनते हैं। असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, वैष्णव का आचार, वैष्णव को कैसे पहचाना जा सकता है? न केवल इससे कि वो वैष्णवों का संग करता है, परंतु और भी महत्वपूर्ण कि वो अभक्तों का या असत्संग को त्याग करता है। अगर कोई व्यक्ति वैष्णवों के संग में भी आता है, साथ साथ कोई इधर उधर भी जाता है, इधर भी उन अभक्तों के साथ जाकर मिलता जुलता है, बैठता है, उठता बैठता है और गपशप करता है उनके साथ में बैठ के, उनके साथ सिनेमा जाता है, तो फिर वो सच्चा वैष्णव नहीं है। जब तक कि व्यक्ति असत्संग को त्याग ना करे तब तक वो सच्चा वैष्णव नहीं कहलाता है। तो जो अवैष्णव है या जो स्त्री संगी, जो व्यक्ति स्त्रियों से संग करने का ज्यादा इसमें ज्यादा रुचि रखता है, मतलब जो ज्यादा कामुक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का संग भी बहुत बुरा हमारे लिए। और दूसरा है कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण भक्त नहीं है। तो कृष्ण भक्त अभक्तों में से भी कई तरह होते हैं, कई प्रकार होते हैं। एक तो है भोगी व्यक्ति, जिसका वर्णन तो कर चुके हैं महाप्रभु। दूसरे हैं जो नास्तिक लोग हैं, जो देवी देवताओं के उपासक हैं, जो मायावादी लोग हैं, ये सब कृष्ण अभक्त हैं। तो इन सब का त्याग हमें करना चाहिए। और आगे महाप्रभु कपिल मुनि की शिक्षा, कपिल मुनि जो अपना उपदेश करते हैं अपने माता को श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में, इस तीसरे स्कंद के 3 श्लोक को बताते हैं। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिर ही श्रीर्यश क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संशयम् तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडतात्मस्व साधुषु संगम न कुर्यात् शोष्येषु योषित क्रीडा मृगेषु च न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। असत्संग करने से कौन से हमारे अच्छे गुण हम खो देते हैं और हमारी क्या दुर्दशा होती है, इसका वर्णन कपिल देव इन 3 श्लोकों में करने जा रहे हैं। कौन से हमारे सद्गुण हम खो देते हैं असत्संग से? सत्यम, दूसरा शौचम, तीसरा दया, चौथा मौनम। मौनम मतलब फिर हम बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ बकवास करते हैं, भौतिक चीजों के बारे में बोलते हैं। कृष्ण कथा बोलना यह भी मौन के बराबर है, बल्कि मौन से श्रेष्ठ है। पांचवा बुद्धि, हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। री मतलब लज्जा। सातवां श्री मतलब हमारा सौंदर्य। आठवां क्षमा। नौवां शमः मतलब मन को संयम में लाना। दसवां दमः मतलब हमारे इंद्रियों को दमन करना। भगः मतलब हमारे ऐश्वर्य। च इति यत् संगाद् याति संशयम्। ऐसे असत्संग में ये सारे जितने भी गुण हैं, ये 10 जो अच्छे गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साथ साथ तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडित आत्मशु असाधुषु। तो ऐसे असत्संगी लोगों का वर्णन कर रहे हैं। अशांतेषु, ये लोग हमेशा अशांत रहते हैं। मूढ़ेषु, मूर्ख रहते हैं। असाधु मतलब सारे दुर्गुणों से भरे हुए रहते हैं। खंडित आत्मसु, उनकी आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो गई होती है, कोई आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होती उनके लिए। संगम न कुर्यात् शोषेषु, संगम न कुर्यात्, कभी ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। शोषेषु, हमेशा शोक करते रहते हैं, अरे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, काश ऐसे होता, काश वैसे होता। और उनकी दशा क्या है? योषित क्रीड़ा मृगेशु च, योषित मतलब एक स्त्री, क्रीड़ा मृगेशु मतलब एक स्त्री के हाथ में वो एक पालतू कोई जो खिलौना होता है, पशु का खिलौना, वैसे हो जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जहां भी यहां स्त्री शब्द इस्तेमाल किया गया है वो पुरुषों के लिए किया गया है, और जहां स्त्री का सवाल है तो उनको समझना चाहिए कि ये पुरुष है। जो स्त्री के लिए पुरुष जो है वो खतरे का कारण है, और पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण या खतरे का कारण है। तो इस प्रकार से कपिलदेव आगे बताते हैं, न तथा अस्य भवेन मोहो बंधश्च अन्य प्रसंगतः। ऐसे संग से, ऐसे प्रकृष्ट रूपेण, ऐसे तीव्रता के संग से जो भवेत मोह बंधः, जो ऐसे मोह और बंधन उत्पन्न होता है, ऐसे संग से, ऐसा बंधन और ऐसा मोह और किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होता। योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति ऐसे स्त्री संग में जाता है या ऐसे लोगों का संग करता है जो कि स्त्री संगी है, तो उसके अंदर जो मोह और बंधन उत्पन्न होता है वो और किसी भी तरह से कार्य से नहीं होता। सबसे ज्यादा तीव्रता का मोह और बंधन इससे, इस संग से उत्पन्न होता है। यहां जो स्त्री संघ की बात की गई है वो साधारण गृहस्थ आश्रम की बात या जो भक्तों के लिए नहीं की गई है, ये सब अभक्तों की बात हो रही है। जहां स्त्री पुरुष संग केवल इंद्र तृप्ति के लिए की जाती है, केवल भौतिक चीजों के लिए की जाती है, जो भक्ति भावना से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अपने गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, वो ऐसे लोगों के लिए नहीं बताया हुआ है यहां पर। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कात्यायन संहिता का एक श्लोक, वरम हुतव ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न शौरी चिंता विमुख जन संवास वैशसम। वरम, ऐसे संग से अच्छा ये है, हुत वह ज्वाला, हुत वह मतलब अग्नि और ज्वाला मतलब उसकी चिंगारे, इससे बेहतर है, ऐसे संग करने से बेहतर है कि हम अपने आप अग्नि में प्रवेश कर जाएं, या पंजर अंतर व्यवस्थिति ही, या किसी बंद पिंजरे में हम जाके बैठ जाएं। मतलब एक पशु की तरह, जैसे जू में चिड़ियाखाने में क्या होता है, पशु को एक पिंजरे के अंदर बंद किया हुआ होता है, तो भले हम ऐसे कोई पिंजरे में प्रवेश करें जिसके चारों ओर अग्नि जल रही है, ऐसे भी पिंजरे में प्रवेश करना अच्छा है, लेकिन ऐसे बुरे संग में जाना बुरा है। कैसे बुरे संग से हमें दूर रहना चाहिए? शौरी चिंता विमुख जना, शौरी किसका नाम है? भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण का नाम है शौरी। तो शौरी चिंता विमुख जन, तो जो भगवान कृष्ण की चिंता करने से विमुख है, ऐसे जनों का संवास, उनका संग करना, ये वैशसम, ये बड़ी एक दुर्घटना है सबके जीवन में, इसलिए अभक्तों का संग हमें नहीं करना चाहिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, मा द्राक्ष क्षीण पुण्यान क्वचित अपि भगवत भक्तिहीनान मनुष्यान। हमें ऐसे लोगों को देखना भी नहीं चाहिए जो कि भगवत भक्ति विहीन है और जिनके कोई पुण्य कार्य नहीं है। ऐतो सब चाड़ियार वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हान लाय कृष्ण एक शरण। इसलिए इन सब चीजों को, इस बुरे संग को त्याग कर अकिंचन होना, अकिंचन मतलब भौतिक भोग की इच्छाओं को त्याग कर लोय कृष्ण एक शरण, कृष्ण एक शरण, इन सब बुरे संगों को त्याग कर हमें अकिंचन होकर केवल श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। और फिर इसकी पुष्टि करने के लिए चैतन्य महाप्रभु भगवद गीता का ये श्लोक बोलते हैं। कौन सा श्लोक है ये? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया सनातन गोस्वामी को कि कैसे असत्संग इतना खतरनाक होता है और कैसे इस असत्संग से हमको बचना चाहिए। और एक घटना ऐसी आती है चैतन्य लीला में, जब राजा प्रताप रुद्र उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु इनकार करते हैं। आखिर राजा प्रताप रुद्र अपने दरबार के मंत्री और उनके उपदेशक, उनके पुरोहित सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि आप जाके कुछ कहिए मेरी ओर से कि मुझे महाप्रभु का दर्शन करना है। किसी न किसी तरह से आप दो शब्द कहेंगे तो शायद महाप्रभु मान जाएंगे। तो जब यह प्रस्ताव सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के सामने रखा कि ये राजा है प्रताप रुद्र, बड़े अच्छे आदमी हैं और आपका दर्शन करने के लिए बहुत आतुर हैं, तो कृपया इस इच्छा की पूर्ति कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब यह प्रस्ताव सुना तो उन्होंने अपने कान बंद कर दिए। कर्णे हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायण सार्वभौम कह के न अयोग्य वचन। तो कर्णे हस्त दिया, अपने कानों में हाथ दे दिए और प्रभु स्मरे नारायण और नारायण का स्मरण किया। सार्वभौम कहो कहनो अयोग्य वचन, ऐसे अयोग्य बात क्यों बोल रहे हो सार्वभौम, यह उचित नहीं है। विरक्त सन्यासी अमर राज दर्शन स्त्री दर्शन सम विशेर भक्षण। क्योंकि मैं तो सन्यासी हूं और मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं एक राजा को मिलूं, क्योंकि राजा से एक सन्यासी को मिलना एक स्त्री के मिलने से बराबर है। सन्यासी को तो न स्त्री से मिलना चाहिए न राजा से मिलना चाहिए। और ये कैसे है? सम विषेर भक्षण, जैसे कि मानो विष का भक्षण करना। तो मैं तो सन्यासी हूं, विरक्त हूं, तो मुझे इन दो तरह के लोगों को मिलना ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने एक श्लोक बताया, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य परम परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिनामथ योषिताम च हाहंत हंत विष भक्षणतोप्य साधु। वो कहते हैं निष्किंचनस्य, निष्किंचन या अकिंचन, जिसने भौतिक इच्छा छोड़ी है या भौतिक भोग की इच्छा जो छोड़ना चाहता है, अस्य ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि भगवत भजन उन्मुखस्य, जो भगवत भजन करने के लिए उन्मुखस्य बहुत इच्छुक है, बहुत आतुर है, और जो कि जगमिशोर, जो कि इच्छा रखता है, कैसी इच्छा रखता है? भवसागरस्य पारम परम, ये जो भवसागर है इसको पार करना और उस पार चले जाना जो कि परम, जो कि बहुत दूर है। इस भौतिक सृष्टि को कभी भवसागर कहा जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि एक नदी है जिसका नाम है वैतरणी, और ये वैतरणी नदी बहुत विशाल है, और ये कहां पर है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में है। क्योंकि ये नदी बहुत विशाल है इसलिए इसको सागर के समान कहा गया है और इसको भवसागर कहते हैं, क्योंकि भवसागर के इस पार या वैतरणी नदी के इस पार सारे प्राणी मोह में रहते हैं और उनको बारंबार भौतिक देह प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। लेकिन इस भौतिक जगत के परे, इस वैतरणी नदी के परे भगवान का धाम है जो कि बहुत दूर है। इसलिए यहां चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पारम परम, पारम मतलब उस पार जाना, इस वैतरणी नदी के उस पार जाना, और वो जो तट है वो बहुत दूर है, परम भवसागरस्य। कहने का मतलब है कि महाप्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के धाम को पहुंचना चाहता है, इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में स्थित होना चाहता है, उसके लिए क्या है, क्या नियम बताया है? संदर्शनम, दर्शन करना किसी भौतिक चीज के लिए, किसका? विषयी नाम अथवा योषिताम च। दो प्रकारों, दो चीजों को, दो व्यक्तियों का दर्शन करना उसके लिए बहुत बुरा है। एक है विषयी नाम। विषयी नाम मतलब जो व्यक्ति विषय भोग में लगा हुआ है, एक भौतिकवादी व्यक्ति जो कि विषय भोग कर रहा है, उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। और योषिताम च, योषिताम मतलब स्त्री। तो किसी पुरुष को ऐसे इंद्रिय भोगी भोग करने वाला व्यक्ति या किसी स्त्री का इस प्रकार से भोग की दृष्टि से दर्शन नहीं करना चाहिए। संदर्शनम शब्द का अर्थ है कि भोग की दृष्टि नहीं, किसी भौतिक दृष्टि से देखना इन चीजों को, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हा हंत हा हंत विष भक्षण तो अपि असाधु। विष भक्षण करने से भी ज्यादा खतरनाक है ये। तो जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहता है वो अपनी नजर को हमेशा संभाल के रखेगा, और नजर भी ऐसी कोई चीज के ऊपर जाए जो कि देखना नहीं चाहिए, फिर भी उस चीज के ऊपर चिंतन नहीं करना चाहिए। हम सड़कों पे जाते हैं तो जगह जगह हम इंद्रियों के भोग के विषय देखते हैं, तरह तरह स्त्री पुरुष इधर उधर चल रहे होते हैं, और कभी कभी लोग हम देखते हैं होटल में बैठ के ऐसे खा रहे हैं, जैसे रास्ते पे यहाँ पर होटल हैं, लोग बैठ के भोजन खा रहे हैं वहाँ पर। तो हम ज़्यादा इनके ऊपर भी ध्यान देंगे, हमको भी लगता है अरे कितना अच्छा है ये लोग, कितना एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा है, हम लोग भी थोड़ा एक बार जाके थोड़ा होटल में खा के आएंगे तो क्या बुरा है, वो भी हम कृष्ण को भोग चढ़ाएंगे ना, उसमें क्या है। तो इस तरह से इनको देखकर हमारे मन में भी वो इच्छा हो जाती है भोग की। इसलिए वो कहते विषयी नाम, न केवल स्त्रियों को देखना चाहिए लेकिन विषयी नाम ऐसे भोग करने वाले पुरुषों को भी नहीं देखना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से स्त्री को भी चाहिए कि वो किसी पुरुष की ओर ऐसे दृष्टि से नहीं देखे, क्योंकि स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध है वो सबसे खतरनाक होता है इस भौतिक जगत में, सबसे बड़ा बंधन का कारण होता है यहाँ पर भौतिक जगत में। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कड़क नियम बताया हुआ है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य काफी घबराए, वो कहने लगे, सार्वभौम कहे सत्य तुम्हारा वचन जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। वो कहने लगे, सार्वभौम आप जो कह रहे हैं वो सत्य है महाप्रभु जी, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये राजा, राजा किंतु भक्त उत्तम, ये राजा कोई साधारण आदमी नहीं है, ये उत्तम भक्त है और जगन्नाथ का सेवक है। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पकार काष्ठ नारी स्पर्श जाय छे उपजे विकार। प्रभु कहे, प्रभु महाप्रभु ने कहा, हाँ तुम जो बोल रहे सर्वभौम वो सही है कि ये राजा भक्त है, लेकिन फिर भी वो राजा है और इसलिए सर्प के समान ऐसे मानना चाहिए उसको, क्योंकि सन्यासी को ये सब धन दौलत और स्त्री से संपर्क नहीं रखना चाहिए, और राजा तो धन दौलत का एक प्रतीक है, तो सन्यासी को इन चीजों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। इसलिए सन्यासी को ऐसे राजा वगैरह आदमी उस सांप, जहरीले सांप के समान समझना चाहिए। जिस तरह से काष्ठा नारी स्पर्श जाय छे उपजे विकार, अगर काष्ठ या लकड़ी का भी एक पुतली बना हो स्त्री का, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे एक पुतली को भी स्पर्श करे, प्रतिमा को भी स्पर्श करे, तो उसके मन में विकार आ जाएगा, उसका मन शांत नहीं रह पाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसे राजाओं से मुझे मुक्त होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे एक व्यक्ति एक जहरीले सांप को देखकर घबराना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करना चाहता है उसी प्रकार से उसे भयभीत होना चाहिए एक विषयी व्यक्ति से और एक स्त्री से। उसे ऐसे लोगों की ओर देखना भी नहीं चाहिए। और भट्टाचार्य, अगर तुम बार बार मेरे से ऐसे प्रस्ताव सामने रखते जाओ तो मैं यहाँ इस जगन्नाथपुरी को छोड़ के जाऊँगा और तुम कभी मुझे नहीं देख पाओगे। तो भट्टाचार्य तो अभी और भी घबरा गए, वो तो चले ही गए वहां से और फिर चिंतन करने लगे क्या उपाय निकालें। भक्त तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, उन्होंने आखिर उपाय निकाला ही। आप सब तो जानते हैं रथ यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु थके हुए थे, महाराज प्रताप रुद्र एक साधारण वैष्णव का पोशाक पहनकर वहां आए, उनकी सेवा करने लगे, चरण दबाने लगे महाप्रभु के और गोपी गीत गाने लगे और फिर महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा दे दी। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कड़क बातें क्यों कही, हालांकि वो जानते थे कि महाराज प्रताप रुद्र एक भक्त हैं, क्योंकि वो एक आदर्श रखना चाहते थे, एक सबक सबको सिखाना चाहते थे कि हमेशा इन चीजों से, दो तरह के बुरे संगों से दूर रहना। अगर कोई भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो भौतिक दृष्टि से हमें इन दो प्रकार के लोगों को नहीं देखना चाहिए और भोग की दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है कि असत संग कितना बुरा होता है। अजामिल के लीला से, अजामिल के घटना से हम देख सकते हैं कि कितना सही है। एक बार केवल अजामिल ने देखा, बस उसका काफी था। उसके आने वाले 60 साल ऐसे चले गए एक बार देखने से। सोच लीजिए, जब अजामिल ने यह दृश्य देखा तो एक नौजवान था, वो 20-25 साल का हुआ होगा उस समय। और जब ये घटना हुई, जबकि उसने नारायण का नाम पुकारा, यमदूत उसके पास आए, तो 80 से भी ऊंची ज्यादा उसकी उम्र थी। कहने का मतलब है उस एक घटना के लिए उसके 60 साल जो है वो बर्बाद हो गए एक दृश्य से। तो देखिए, हमारे तो ऐसे हर रोज ऐसे दृश्य होते हैं, हर रोज कितने जाने इच्छाएं होती होंगी मन में, तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए कि ठीक है, इस समय हम केवल अपने मन में कृष्ण कथा या कृष्ण भगवान का चिंतन करते रहें। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनंक्षसि। भगवान कहते हैं डरो नहीं अर्जुन, अगर कोई भक्त सोच रहा होगा फिर क्या होगा, मेरा कैसे होगा, तो भगवान कहते हैं डरो नहीं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अगर मच्चित्तः, अगर हमेशा तुमने मेरा स्मरण किया, मेरे बारे में सोचते रहे, तुम कृष्ण भावना भावित हमेशा रहे, सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि। दुर्गाणि, दुर्ग मतलब जो अड़चन आती है, जो खतरे आते हैं, धोखे आते हैं जीवन में, तरिष्यसि उनको तैर सकोगे, तार कर सकोगे। कैसे? मत प्रसादात, मेरी कृपा से। और अगर तुमने नहीं सुना, अथ चेत त्वम अहंकारम न श्रोष्यसि, और अहंकार की वजह से अगर तुमने मेरी इस बात को नहीं सुना तो क्या होगा, विनंक्षसि, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। विनाश होगा मतलब क्या होगा, बार बार तुम्हें भवसागर में जन्म लेना होगा, बार बार कितने जन्म चले जाएंगे। तो इस प्रकार से केवल चैतन्य महाप्रभु ने इतने कड़क बातें क्यों कही, क्योंकि वो सबक सिखाना चाहते सारों के, कितने खतरनाक है ये चीजें, कि हमको संभल के रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारे प्राणियों के प्रति, दूसरे अभक्तों के प्रति घृणा करनी चाहिए, या स्त्रियों के प्रति घृणा करनी चाहिए, या स्त्री के लिए ऐसा नहीं कि पुरुषों के प्रति वो घृणा करे, ऐसा नहीं, घृणा की बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हमें ये सब समझा रहे हैं ताकि हम सावधान रहें। सावधानी के लिए महाप्रभु इतनी ज्यादा कड़क में बोल रहे हैं, और सावधान नहीं रहे तो इसका परिणाम क्या होगा वो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है। और अजामिल की कथा से हम ये स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो इसी प्रकार से मत चित्तः सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात् परिष्यसि, ये ध्यान में रखेंगे, मत चित्तः कृष्ण भावना में हमें रहना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके फिर हम इन सारे अड़चनों को तैर कर भगवान के धाम में जा पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न? प्रश्न ये है कि हर एक इंद्रिय का विषय रहता है, जैसे आंख का विषय है रूप, कान का विषय है ध्वनि इत्यादि, तो मन का क्या विषय है, कोई बता सकेंगे? पांचों ही, ये पांचों ही जो है इसके ऊपर तो मन चिंतन करता है। जो अनेक इंद्रियों से जो सिग्नल आते हैं अंदर मन के अंदर, मन उसके ऊपर ध्यान करता है, चाहे वो किसी से भी इंद्रिय से क्यों ना हो। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। किसी एक भी विषय के ऊपर अगर हमारी इंद्रिया केंद्रित हो जाए तो इतना प्रबल हो जाए कि मन को भी अपहरण करके ले जाएगा। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियां जो है इतनी प्रबल है।